Hare Krishna. This class on Bhagavad Gita, 9th chapter, shlok number 32 and 33, given in Faridabad, sector 23, on 17 December 2015 by myself, Prashant Mukunda Das.
Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Janavala Bhagiri Vardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Jaya Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabhi boliye, Hare Krishna, Hare Krishna. Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Radhe Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Radhe Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Shri Radhe Jaya Radha Govinda. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe Jaya Radha Nath Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Jaya Gaura Nittai, Jaya Gaura Nittai, Gaura Nittai, Bhaj Gaura Nittai, Jaya Gaura Nittai, Jaya Gaura Nittai, Gaura Nittai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री राधा गोविंद भगवान की जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय पंच तत्व गौर निताय की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय पद पावन श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की जय निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण आम ही पार्थ विपाश्रित्य ये अपि सयो पाप योनिः स्त्रियो वैश्यस्य तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति पराम गतिम्। इसका अनुवाद, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य मतलब व्यापारी तथा शूद्र मतलब श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसका अगला श्लोक हम पढ़ेंगे साथ ही में। किम पुना ब्राह्मण पुण्या भक्ता राज ऋष तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजस्य सतथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। इसका अनुवाद है, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषि के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आन जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। कार्यक्रम में इसमें बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भगवद गीता का, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, परम गुह्य ज्ञान, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, छुपा हुआ सीक्रेट नॉलेज, गुह्य ज्ञान। और भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से नवे अध्याय को बीच में रखा। जब हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें ब्रेड होती है ऊपर, ब्रेड होती है नीचे, बीच में होता है सारा मसाला, घी, मक्खन, सब्जी, आलू टिक्की, सब कुछ बीच में होता है। तो उस तरह से जितना भी मसाला है, असली परम गुह्य ज्ञान, उसको भगवान ने कहाँ रखा, सेंटर, बीच में रखा है। तो इसलिए इसका एक एक श्लोक बहुत ही उत्तम इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये श्लोक तो बहुत ही अति उत्तम, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं इस युग से आया हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमेशा द्वंद्व चलता है मन के अंदर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा है भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। तो भक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, कोई पंजाबी है, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, जाति का कोई भेद नहीं है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर वह लागू नहीं होता। तो जो भगवान की दिव्य भक्ति में लगा है उस पर यह चीज लागू नहीं होती है। सभी परम धाम के अधिकारी हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति शरीर कुछ भी हो अंदर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, सबके सब अंदर से सच्चित आनंद है। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भागवतम में बताया गया कि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में कैसा हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। तो कोई चंडाल मतलब जानते हैं, कुत्ते का मांस खाने वाला,
या फिर वो व्यक्ति जो लोगों को फांसी पे चढ़ाता है, चंडाल, ऐसा व्यक्ति जो शमशान घाट पे रहता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर किसी कृष्ण भक्त के संग में आ जाए तो क्या बन सकता है? हाँ जी, भक्त बन सकता है, भगवान का प्रेमी भक्त बन सकता है। लेकिन जिस प्रकार से बताया गया हमें, उस प्रकार से संग करना पड़ेगा। जैसे बताते हैं लोहे की जो एक बार है, रॉड, लोहे की रॉड को अगर आप अग्नि में रखें तो लोहे का स्वभाव जलाने का नहीं है, लेकिन अग्नि का स्वभाव जलाने का है। और काफी देर तक लोहे की रॉड को अग्नि में रखा जाए तो क्या बन जाएगी? अग्नि बन जाएगी, जल जाती है। और फिर उसको छुए तो फिर हम भी जल जाते हैं। तो उसका स्वभाव जलाने का कैसे आया? संसर्ग में, अग्नि के संग में रहने के कारण उसने वो स्वभाव अर्जित किया। ऐसे ही भक्त के संग में रहने से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? ऐसा भाव, ऐसा, ऐसी हमारे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएंगे जो कि अग्नि के अंदर गुण है, जो भक्त के अंदर गुण है वैसे हमारे अंदर भी आ सकते हैं। आगे कहते हैं, भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतना प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब इसको ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। और जैसे लोग बोलते हैं, हाँ भक्ति में आ गए हैं लेकिन हम शुद्ध नहीं हो रहे, शुद्ध नहीं हो रहे, शुद्ध नहीं हो रहे, इसका कारण एक ही है कि हमारी शरणागति पूर्ण रूपे नहीं है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर कि अगर व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है, ऋण मुक्त होना चाहता है, तो इस संसार में हम बहुत सारे लोगों के ऋणी हैं। जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो किसके ऋणी हो गए? सूर्य भगवान के। और कपड़े सुखाने के लिए खाली सूर्य की जरूरत नहीं, हवा की जरूरत भी है, तो किसके ऋणी हो गए? वायुदेव के। आप देखिए, जो वायुदेव जो है उनके हम ऋणी हैं। बिजली जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपके घर में मीटर लगा के जाते हैं हुडा वाले, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, और वो फिर आपसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लेते हैं और आप हंसते हंसते देते भी हैं, जी 6000 का आया जी देना पड़ेगा, 2000 का आया देना पड़ेगा, 25000 का भी आए तो देना पड़ेगा। लेकिन सूर्यदेव ऋण आपसे मांगते हैं तो आप उनका ऋण चुकाते नहीं है। सूर्य को जल अर्पित करते हैं सब लोग? नहीं करते हैं। वायुदेव को क्या करेंगे? चलो सूर्य के तो हमने चीटिंग कर ली, लोग चढ़ाते हैं हम भी चढ़ा देंगे, वायु को क्या अर्पित करेंगे? कुछ नहीं अर्पित कर सकते। तो इस प्रकार से अनेक देवी देवताएं हैं जिनकी हम उपासना नहीं करते हैं। पानी, जल, रोज हम उससे अपने बर्तन धोते हैं, हमारे घर में जल आता है, पानी पीते हैं, तो उसके देवता कौन? वरुण देव। उनकी उनकी सेवा कौन करेगा? पवन देव, वरुण देव, अग्नि देव, इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्यूबलाइट जला रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? कोयला, कोयले से बिजली बनती है। कोयला कैसे बनता है? सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव और अग्निदेव, उसकी जो ताकत है, ऊष्मा शक्ति, उसके कारण आज यहाँ प्रकाश हो रहा है। उसका हम कहाँ ऋण चुकाते हैं? हम तो बिजली वालों का चुकाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वालों का, उसका कहाँ ऋण चुकाते हैं? तो हर एक जीवात्मा भगवान के धाम से आने के बाद अनेक अनेक लोगों की ऋणी है। जो ये शास्त्र है हमने नहीं लिखे, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे, उनके ऋण कैसे चुकाएंगे? और प्रभुपाद जी से पहले ये भगवद गीता जिन आचार्यों ने, वेद व्यास जी ने लेके आए, उनका ऋण हम कैसे चुकाएंगे? हम तो कभी थैंक यू नहीं बोलते, कभी वेद व्यास जी का बर्थडे नहीं बनाते, अपने बच्चों का बनाते हैं, लेकिन वेद व्यास के लिए बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू व्यास देव, करते नहीं, कुछ नहीं करते हम। तो कैसे ऋण चुकाएंगे? अपने पितरों का, जिन्होंने हमको ये शरीर प्रदान किया। ये शरीर कैसे मिलता है? जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं तो हम जो पीछे अपने संस्कार बच्चे छोड़ के आते हैं, वो जब पिंड दान करते हैं तो उनके पिंड दान करने से हमको एक एक अंग प्राप्त होता है। कहते हैं ना, 9 पिंड दान करते हैं और 9 दान करने से एक एक अंग प्राप्त होता है, एक एक अंग। तो एक एक अंग जो है, अंग पूर्ण अंग पाने के कारण हम अपने जो पूर्वज छोड़ा है, अपने जो बच्चे परंपरा छोड़ा है, उनके हम ऋणी हो गए ना, उन्होंने हमें शरीर प्रदान किया, तो हम कहां चुका रहे हैं? लोग तो सोचते हैं अरे कृष्ण भक्ति के साथ साथ खाली दुर्गा जी और शिव जी की भक्ति करना जरूरी है, वो हम कैसे छोड़ दें? प्रभु जी, हमने भक्ति में आने से पहले 9 रात्रों का व्रत रखा, हमने शिव जी का भजन किया, हमने सोमवार के 16 सोमवार किए, हमने साई बाबा का थर्सडे मनाया, अब हम कैसे त्याग दें? आप तो सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं 33 करोड़ के ऋणी हैं आप। पृथ्वी पे बैठे हैं आप, ये पृथ्वी रोज आपको संभाल लेती है। अगर ऐसा हो आप बेड से उतरे और आपको ये विश्वास ही ना हो कि आज मैं खड़ा हो पाऊंगा, नीचे दलदल है, तो कितनी बार उतर पाएंगे, चल पाएंगे, नौकरी पे जा पाएंगे? इस कारण ये सारे जो हैं हम इनके ऋणी हैं। तो हम कहां ऋण चुकाते हैं इनका? हमारे घर जो नौकर आते हैं काम करने के लिए, वो हमसे कुछ पैसा अर्जित कर कर हमारे घर में काम करते हैं, हम उनसे फिर एक्स्ट्रा काम भी कराते हैं, ये कर जाना, ये जरा दीपावली आ रही है, खिड़की पोछ दो, दरवाजे पोछ दो, कपड़े धो दो, आज ये बीमार है, ये कर दो, कर देते हैं। तो हम एक एक कर्म के ऋणी हैं। और फिर भक्त समाज में, भक्त समाज में एक दूसरे की सेवा ना करके धीरे धीरे सेवा करवाने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है पुराने भक्तों को, तो फिर हम उन भक्तों के ऋणी हो जाएंगे, हम अपने गुरु आचार्यों के ऋणी हैं। अरे प्रभु जी इतने सारे ऋण सुना दिए, उतरेंगे कैसे? तो इसके लिए भागवतम में बहुत सुंदर बताया गया, देव ऋषि भूतृप्ता निर्णाम पित्रांचा किंकरो। किन लोगों के ऋण? भूतृप्ताम, भूत और अतृप्त आत्माएं, देवता और ऋषि, देव ऋषि भूतृप्ताम निर्णाम, मतलब जितने भी नर हैं, पितृणाम पित्र चा किंकरो इनके। तो वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, देव ऋषि भूतृप्ता निर्णाम पितृणाम चा किंकरो नायम ऋणी चा राजना। राजन तुम किसी के ऋणी नहीं रहोगे, पर क्या करना पड़ेगा? सर्व आत्मनम यम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत करतम। उन्होंने बहुत सुंदर बताया, सर्व आत्मनम सबके आत्मा में रहने वाले कौन है? परमात्मा भगवान कृष्ण। सर्व आत्मनम यम शरणम शरण्यम, जिसकी शरण सभी 33 करोड़ देवी देवता ग्रहण करते हैं, अगर तुम उनकी शरण ग्रहण करो तो क्या हो जाएगा? गतो मुकुंदम परिहत करतम। बस एक ही कार्य करना है, मुक्ति दाता एक मुकुंद की शरण ग्रहण करने से आप सबके ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कई लोग मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बनते हैं या ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो भौतिक समाज के लोग उन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अरे कैसे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते, छोड़कर आ गए उनको माँ बाप को, यहाँ पड़े मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नाच रहे खा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप घर में, ये फुल टाइम डिवोटी बन गए, इनको बच्चों की एजुकेशन का सोचना नहीं चाहिए, धोती कुर्ता पहन के निकल पड़े अपने बाहर। तो उसमें बोल रहे हैं आप किसी भी कर्तव्य के लिए बाध्य नहीं है, आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्यों? गतो मुकुंदम परिहत करता, बस एक काम करना है, उसके बाद आप किसी के ऋणी नहीं, ना पत्नी के, ना बच्चों के, ना किसी के, एक के। लेकिन हम सबको थोड़ा 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 बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसी के कारण हमारे जीवन में उद्विग्नता रहती है, शांति नहीं रहती है। अगर हम शांति चाहते हैं अपने जीवन में तो बस इनकी एक ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, कहते हैं प्रभु कहे साधु एई भिक्षु रा वचन। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि साधु कैसे बनना चाहिए? प्रभु कहे साधु एई भिक्षु रा वचन मुकुंद सेवा व्रत करीला निर्धारण। सिर्फ एक मुकुंद का सेवा व्रत अपने जीवन में धारण कर लीजिए, फिर क्या है आप सच्चे साधु या साधक बन सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान मुकुंद कृष्ण को छोड़कर बाकी सब इधर उधर घूमते रहते हैं, और उनकी शरणागत पूर्ण रूपेण हमने ग्रहण नहीं करी है। और पूर्ण रूपेण शरणागत ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है, वो यहां पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके समान से समान व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो क्या करना है? शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी है। तो शुद्ध भक्त कौन है? सबसे ज्यादा अगर हम देखें हमारे आसपास, 3 लोग शुद्ध भक्त हमेशा विराजमान है। कौन है? पहले तुलसी महारानी सदा आपके घर में विराजमान है, आप उनका संग कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के चैंटिंग करिए, उनका बीज रोपण करिए, उनके पौधे उनके पौधे की केयर करिए, तो ये शुद्ध भक्त की संग करना हो गया। दूसरा आपके गुरु, आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं, जिनका आपने आश्रय ग्रहण किया है वो सदा आपके साथ हैं, आपके शिक्षा गुरु, आपके दीक्षा गुरु। और साथ में तीसरे कौन है? श्रील प्रभुपाद, शुद्ध भक्त सदा आपके साथ हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का संग करने से व्यक्ति क्या बन सकता है? भक्त बन सकता है। हम इधर उधर घूमते रहते हैं, ये प्रवचन सुनेंगे, वो प्रवचन सुनेंगे, यहाँ जाएंगे, वो प्रभु जी, वो सेवा, ये सेवा, लेकिन सबसे मुख्य क्या है? ग्रंथों का अध्ययन करना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा इन ग्रंथों का अध्ययन भी करिए और इनका वितरण भी करिए, ताकि दूसरे लोग इनको पढ़ करके क्या बन सके? शुद्ध भक्त बन सके। जैसे कि वर्णन आता है इसके स्टार्टिंग में बताया गया, भगवद गीता का मैराथन का मंथ चल रहा है, इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इस रहस्य को शुद्ध भक्तों को बताएगा वो क्या होगा, वापस मेरे पास आएगा। और आगे भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु किश्चितम प्रियकृतम भवति न च मे तस्मदा अन्या प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान के भगवत गीता को बांटना ये टारगेट नहीं है 23 सेक्टर का गोए, ये क्या है, ये आप ही को कृपा मिल रही है और आप भगवान के क्या बन जाएंगे, प्रिय बन जाएंगे, शुद्ध भक्त के संग करेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे और दूसरों को ये भक्ति प्रदान करेंगे। दोनों में बेनिफिट है, रीडिंग करें तो भी बेनिफिट, डिस्ट्रीब्यूशन करें तो भी बेनिफिट, बेनिफिट 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 100% बेनिफिट। हाँ, फिर आगे कहते हैं रीडिंग करने का क्या फायदा है, तो इसके भगवद गीता के स्टार्टिंग में गीता महात्म 5 नंबर पे लिखा है, कहते हैं भारत अमृत सर्वस्व विष्णु द्विनम सतम गीता गंधो दक्पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है ना। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो कहते हैं जाली डाली जल्दी से, दादी के मुख में क्या डालिए, गंगा जल डालिए, तुलसी दल डालिए। अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, उसके लिए तो क्या कहा जाए, वो एक्सप्लेनेशन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है, मूल विष्णु भगवान कृष्ण ने इसको स्वयं सुनाया है। तो भगवान कृष्ण के मुख से निकलने वाली जो गीता है तो बहुत ही ज्यादा क्या है, मूल्यवान ग्रंथ हमारे पास है। अमृत का ये बॉटल मान लीजिए, यहाँ पर बाहर बीबीटी दुकान लगाते हैं, बुक शॉप माता जी, तो उसमें एक अमृत का बॉटल मिले, इसको पीने से क्या हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, फटाफट दे दीजिए माता जी कितने रुपए का बॉटल, और बुकिंग भी हो जाएगी, हमारे चाचा को तो भेजा नहीं था, हर व्यक्ति चाहता है इसी संसार में। हाँ, तो ये अमृत का जो बॉटल है वो गंगा जल तो खोल करके पीना पड़ता है, लेकिन ये तो ऐसा है कि सामने सामने रखा हुआ है, थोड़ा सा खोलो, एक बूंद पियो और अमृत आपके घर में हमेशा अवेलेबल है। तो कहते हैं पितवा, पियो भी और पिलाओ भी दूसरों को। तो किसी को दो तो उसको ये दिखाना चाहिए, देखिए हम आपको क्या पिला रहे हैं, अमृत दे रहे हैं हम आपको, हमको एक बुक नहीं दे रहे हैं आपको। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो नाम दिया क्योंकि विदेशी लोगों को समझ नहीं आते थे, लेकिन अगर हिंदुस्तान से होता तो इसका नाम होना चाहिए था अमृत वितरण, मैराथन ऑफ अमृत वितरण। अमृत का पेज नंबर, ये पेज नंबर 26, तो क्या होना चाहिए था, अमृत वितरण। हमारा कौन सा मैराथन है, अमृत वितरण, कितने लोगों को अमृत बांट सकते हैं। तो देखिए अमृत बांटने के लिए तो राक्षस भी तैयार हो गए थे अब पीने के लिए। आप जानते हैं सब लोग समुद्र मंथन की कथा, कि उसमें से विष निकला तो विष पीने के लिए और कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ भोलेनाथ शिव जी ने उस विष को पिया, लेकिन अमृत के लिए राक्षस पीछे पीछे भागे और भगवान ने फिर अपना मोहिनी रूप लेकर उस राक्षसों से छीन कर उस अमृत कुंभ को किसको पिलाया, देवताओं को पिलाया। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको ये अमृत पिला सकें। एक डिवोटी थे, मैरिड थे, वो एक बार विदेश में रहते थे अमेरिका में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथ ईशो उपनिषद को देखा। ईशो उपनिषद ग्रंथ के ऊपर भगवान कृष्ण का विष्णु स्वरूप है और 4 हाथ हैं और गले में सांप और शेषनाग पीछे बैठे हुए हैं, पीछे से ऐसे निकल रहे शेषनाग, आपने बुक देखा होगा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये कैसा अजीब सा व्यक्ति है, इसके 4 हाथ है। जनरली तो अमेरिका में सबके 2 हाथ होते हैं, ये तो कोई सुपर ह्यूमन है जिसके 4 हाथ हैं और उसके पीछे क्या है, सांप है, सर्प के आगे खड़ा हुआ है और चारों हाथों में अलग अलग इसने वेपन्स लिए हैं, शस्त्र लिए हैं, चक्र है, कमल है, शंख है, गदा है, तो ये कोई सुपर ह्यूमन है, मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया, किसी भक्त ने उनको वो ईशो परिषद ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन में दिया था और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा मुझे बस जिसने ये लिखा है उसकी शरण में जाना है, और फिर उन्होंने उनकी शरण ग्रहण करी और उनके कहने से वो अपने गुरुदेव से मिले। और गुरुदेव कौन थे, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी के कहने से वो कहाँ आ गए, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने अपनी बहुत ही विरला सेवा, जिसे कहते हैं ना विरला सेवा करी, कौन सी सेवा, हरिनाम संकीर्तन की सेवा करी, और आप नाम उनका जानते हैं, इंद्रदास प्रभु जी, हरि बोल हरे कृष्ण। तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ करके ब्रह्मचारी बन करके पूरा जीवन उन्होंने मंदिर में वृंदावन में भजन 24 आवर चैंटिंग करने में निकाल दिया। तो इस तरह से ये जो अमृत पान है, ये अमृत है सच में, वरना कैसे जीवन बदल जाता है लोगों का सिर्फ कुछ पन्ने पढ़ने से। अमृत है, एक बूंद भी अमृत, पूरा बॉटल भी अमृत, अमृत पूरा अमृत पान। एक व्यक्ति थे, फ्रांस में रहते थे, वो बता रहे थे कि एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे यात्रा में, और किसी माता जी ने उनको कृष्णा बुक दिया, और कृष्णा बुक देने के बाद में ना वो क्रिश्चियन थे और वो भी एथिस्ट थे, मतलब नास्तिकवादी, और जब उनको कृष्णा बुक मिला तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा क्या दे रहे हो मेरे को, हाँ ये क्या दिखा रही हो मेरे को। और नास्तिकवादी ने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं होता, उनका ग्रंथ उठाकर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो फट ही गया, अब आप ले जाओ। तो उन्होंने उनको माता जी को धक्का दिया, मतलब मारपीट पर उतराया उनको कि मैं नास्तिकवादी हूं, मुझे नहीं पसंद भगवान भगवान। तो माता जी ने प्रयास किया और फिर बेचारी मार खा के चली गई। तो वो वहां चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं ना, मार खाए फिर भी क्या दे, कृष्ण प्रेम देना चाहिए मार खा करके। तो उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, देखकर चली गई। वो अपने घर आए और फिर उस कृष्णा बुक को, फटे हुए को क्या कर दिया, रख दिया। और उनकी जो घर में काम करने वाली मेड थी, उसने उन पन्नों को उठाकर फेविकॉल लगाकर शेल्फ के ऊपर रख दिया। और एक दिन उनकी जो पत्नी थी वो किसी बीमारी के कारण समाप्त हो गया उनका शरीर, और उनकी बेटी को भी वही बीमारी हो गई थी, और उनका जो बेटा था वो एक्सीडेंटल डेथ में मारा गया, और उनकी नौकरी में बहुत परेशानी चल रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होकर जीवन में सोचा अब मुझे बस सुसाइड कर लेना चाहिए। अंतिम कारण यही है, व्यक्ति जब परेशान होता है सोचता है बस कैसे भी करके शरीर को समाप्त कर दूं। वो सोचता है शरीर समाप्त होने से मेरे प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे, शरीर समाप्त होने से प्रारब्ध समाप्त नहीं होते हैं। आप जैसे ही दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, प्रारब्ध आपसे पहले वहां पर पहुंचे हुए हैं आपको परेशान करने के लिए। जगह बदलने से भी प्रारब्ध नहीं बदलते, नौकरी बदलने से भी प्रारब्ध नहीं बदलते, पत्नी बदलने से भी प्रारब्ध नहीं बदलते, प्रारब्ध आपके पीछे कंटिन्यू है। हाँ, जैसे मैं खून करने के बाद जैकेट बदल लूं, रेड कलर का पहन लूं और भागूं, तो मुझे क्या पकड़ नहीं पाएंगे, वो पकड़ लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं मैंने किस कलर का जैकेट पहना है। मेरे कर्तव्य जो है, जिस मेरे कर्म है, उसको फटाक से आकर पुलिस और जो CID है वो पकड़ लेगी। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो थे सोचे सुसाइड कर लेता हूं, लेकिन सुसाइड ना कर कर उन्होंने सोचा सुसाइड करने से पहले कुछ पढ़ लेता हूं। तो पढ़ने के लिए सोचा क्या पढ़ूंगा कि नास्तिकवादी थे, बाइबल है नहीं मेरे घर में, तो बाइबल लेने के लिए सोच ही रहे थे तो उनको घर में वो कृष्णा बुक मिला। तो कृष्णा बुक मिला तो उन्होंने कृष्णा बुक पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते कुछ ही अध्याय पढ़ने के बाद में उन्होंने इस्कॉन फ्रांस का एड्रेस ढूंढा, और फिर वहां जाकर क्या बन गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी डिवोटी बन गए। और फिर उस समय ऐसे ही होता था, जो भी आता था मंदिर में कांग्रीगेशन या गृहस्था नहीं होता था, हर व्यक्ति बस एक ही होता था, फुल टाइम मींस ऑरेंज कपड़े, और फिर वो मंदिर में आ जाता था। प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को लेके आया। तो इस तरह से सोचिए, एक ग्रंथ कितने लोगों का जीवन बदल सकता है। जैसे प्रभुपाद जी के लिए हम कितने ऋणी होने चाहिए, यह हमें सोचना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने देखा कि दूसरे पार एक आदमी एक पिंजरे के अंदर बहुत सारे कबूतरों को लेके आ रहा है। किसको लेके आ रहा है? कबूतर को लेके आ रहा है। और कबूतर को एक मैच होता है, कबूतर लड़ाए जाते हैं ना, कई लोग कबूतरबाजी करते हैं, कबूतर का मैच होता है, कबूतर लड़ाए जाते हैं। तो उसने देखा कि दूसरी पार एक व्यक्ति कबूतर का बहुत बड़ा केज पिंजरा लेकर आ रहा है। तो उसने कहा कि भाई क्या करोगे आप, इनका इतने सारे कबूतर गुट 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 बोले जा रहे, ची 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 आवाजें कर रहे, क्या करेंगे आप इसका? तो कहा इसका हम क्या करेंगे, इनको हम लड़ाएंगे, हाँ, और लड़ाने के बाद में ये मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये आपस में लड़के मर जाएंगे? कह रहे हाँ, अपने को प्रूव करने की जीत में ये मारे जाएंगे। कह रहे लेकिन कुछ जो बच जाएंगे? कह रहे जो बच जाएंगे ना, उनको मैं काट करके भोजन में खा जाऊंगा, क्योंकि मैं कबूतर खाता हूं, तीतर कबूतर कौवे बहुत लोग खाते हैं पक्षियों को, तो नॉनवेज में मैं इनको खा जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई अगर इनको बचाना हो इनको मरने से तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा इनको बचाना चाहते हो तो दो काम करने पड़ेंगे। क्या? पहला तो आपको धन देना पड़ेगा मुझे, उस धन से मैं इनको छोड़ दूंगा, मुझे धन चाहिए। और दूसरा इतनी सर्दी का मौसम है, ऐसी सर्दी के मौसम में मेरे पास जैकेट नहीं है, इसलिए तो मैं गर्म मास्क खाकर क्या गर्मी का एहसास करता हूँ, लक्स कोजी नहीं है मेरे पास, तो गर्मी का एहसास मास्क खा करके होता है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी जैकेट दान दे दें, अपना स्वेटर मुझे दान दे दें, अपना इनर मुझे दान दे दें, अपने कंफर्ट्स मुझे दान दे दें। जब आप अपने कंफर्ट मुझे दे देंगे तो फिर मैं आपको ये बख्शी दे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हरे बोल, फोन पे बात ना करें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने कंफर्ट्स दान दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी जैकेट उतारी, स्वेटर उतारा, इनर उतारा, पैसे भी दे दिए और अपने कंफर्ट्स ठंड में सब कुछ देकर उस पक्षियों को लाए, पिंजरा खोला और उन्हें आजाद कर दिया। तो ये स्टोरी तो बड़ी अच्छी लग रही, कितना सुंदर व्यक्ति था, कितने अच्छे हृदय का था जिसने इतने सारे पक्षियों को बचाया। तो बताते हैं कि वो जो व्यक्ति पिंजरा लेकर आ रहा था वो और कोई नहीं कलयुग था, और वो जो पिंजरा था वो और कुछ नहीं भौतिक जगत था, और उसमें जो पक्षी थे वो और कोई नहीं, कौन थे? हम थे। तो उसने कहा इनको आपस में क्या करूंगा, लड़ाऊंगा। मैं डिवोटी सीनियर, मैं डिवोटी जूनियर, मैं डिवोटी पुराना, मैं डिवोटी नया, मैं 23 सेक्टर का, मैं 37 सेक्टर का, मैं द्वारका का, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश का, आपस में लड़ाऊंगा। और लड़ने के बाद जब ये द्वेष में आएंगे और फिर मारे जाएंगे, और मरने के बाद में जो बच जाएंगे उनको मृत्यु रूप में आकर मैं समाप्त कर दूंगा। तो ये सब मरने वाले हैं। तो एक व्यक्ति था जिसने कहा कि नहीं, मुझे क्या करना है, इन लोगों को बचाना है। तो उसने कहा इनको बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने अपना परिवार दान दे दिया, अपने पैसे, अपनी फैक्ट्री, अपना धन, सब कुछ दान दे दिया। और फिर बाद में उसने कहा तुम्हें अपना कंफर्ट भी दान देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना कंफर्ट भी दान दे दिया। 70 साल की उम्र में वो व्यक्ति पिंजरे को खोलने और पक्षियों को आजाद करने के लिए विदेश की ठंड में बिना जैकेट, बिना स्वेटर के अपने कंफर्ट को दान देकर क्यों गया? ताकि इन पक्षियों को बचा सके। किन पक्षियों को? इन पक्षियों को, हम पक्षियों को। तो हमें उनका ऋणी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनका अगर ऋणी होना चाहते हैं तो उनके इस अनमोल ग्रंथ अमृत वितरण के सहयोग करिए। सब लोगों को जाना चाहिए इसके अंदर, तो हमें ये सीखना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, इसके अंदर एक समझने वाली चीज ये है, कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक होती हैं, और कुछ चीजें बोलते हैं इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट मीन्स जरूरी, और अर्जेंट मीन्स बहुत ही जरूरी। हाँ, एक जरूरी, एक बहुत जरूरी। तो अगर हम इसको चार भाग में बांटें, जरूरी ऐसे क्रॉस बनाए, ऊपर लिखें इंपॉर्टेंट जरूरी, फिर लेफ्ट में लिखें अर्जेंट, राइट में लिखें नॉट इंपॉर्टेंट, नीचे लिखें राइट में लिखें नॉट अर्जेंट, नीचे लिखें नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, और बिल्कुल जरूरी नहीं, और बिल्कुल आवश्यक नहीं। तो इस तरह से अगर हम चार चीजों को बांटे तो हमारे जीवन में चार कर्म को हम बांट सकते हैं, क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, पहला जो स्क्वायर का जो कोना बनेगा ये होगा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या चीज है? जो बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो वो है सबसे ज्यादा हमें अपने शरीर का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। इसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रथम है स्वास्थ्य, फिर है साधना, फिर है सेवा। तो पहले अपने शरीर का ख्याल रखना, स्वास्थ्य पंच भौतिक शरीर का, फिर साधना, फिर अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार आत्मा का ख्याल रखना, उसके बाद सेवा करना। तो पहला क्वाड्रेंट है अपने शरीर का ख्याल रखना, है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, नेचुरल कॉल, आपको यूरिनेट करने जाना है तो इंपॉर्टेंट है, जपा करना है तो वो सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट, इतनी जल्दी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपके सेवाएं करना। तो हम जितनी भी सेवाएं करते हैं, मंदिर की सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंसी नहीं है इतनी कि अभी जाकर सेवा करें। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है साधना और अपनी जीवन को इंपॉर्टेंट चलाना, प्रायोरिटी देना। उसके बाद आता है नॉट सो अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो वो होती है चीज जैसे हमारे मोबाइल फोन आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हम उस मोबाइल फोन के लिए अपने जप को त्याग देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉट इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंसी दोनों की होती है। कृष्ण नाम की अर्जेंसी है, उतनी फोन कॉल की भी अर्जेंसी है। और फिर लास्ट होता है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, वो है प्रजल्पा करना। मोहल्ले में खड़े हो जाना, खाट डाल के मूंगफलियां बिछा लेना और उसके बाद में गप्पे मारते रहना, या टेलीविजन चला लेना, गजक रख लेना, न्यू ईयर बनाना। तो ये क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल जरूरी नहीं है, नॉट अर्जेंट, इसकी कोई अर्जेंसी भी नहीं है। तो इस कार्य को हमें छोड़ करके प्रायोरिटी पहले क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट, साधना और स्वास्थ्य और सेवा, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस चीज को समझ गए तो अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? समय का सदुपयोग जो करते हैं वो व्यक्ति बनते हैं महात्मा, और जो लोग दुरुपयोग करते हैं वो क्या बनते हैं? दुरात्मा। और जो व्यक्ति करता है अपने समय का सदुपयोग, तो वो क्या पाता है? सदगति। क्या पाता है? सदगति। और जो व्यक्ति करता है उसका दुरुपयोग, वो क्या पाता है? दुर्गति। अभी निर्णय किसके पास है? आपके पास निर्णय, आपके हाथ में है। मोबाइल आपके हाथ में है, कौन सा नंबर दबाना है, किससे बात करनी है, इसका निर्णय किसके हाथ में? आपके हाथ में है। मोबाइल टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, कौन सा चैनल चलाना है, इसका निर्णय किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। सदगति मार्ग में जाना है या दुर्गति मार्ग में जाना है, इसका निर्णय का रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जीवन में अपनाना हमें बहुत कठिन लगता है। अरे प्रभु जी, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, आप कर लेते होगे जी, हमारे से बड़ा मुश्किल है। नहीं, सबके लिए सरल है ये। अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि हम सब भगवान के अंश हैं, माम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, सबके सब भगवान के सच्चित आनंद हैं, तो फिर कहां परेशानी रह जाएगी व्यक्ति को? बड़े आराम से व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सकता है। और हमें एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, वो चीज बड़ी सुंदर है कि हमारे जीवन का समय ऐसे ही गुजर जाता है। बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमें अपनी सबसे ज्यादा प्रिय लगती है माँ। सबसे प्रिय कौन लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि वो हमारे खाने पीने का ख्याल रखती है, गोदी में उठाती है, दूध पिलाती है, तो सबसे प्रिय लगती है माँ। कुछ समय बाद माँ उतनी अच्छी नहीं लगती जितने पिता अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए वीडियो गेम्स, फल फ्रूट, कपड़े वस्त्र आदि प्रदान करते हैं, इसलिए पिता अच्छे लगने लगते हैं। और जब हम बड़े होने लगते हैं और तो स्कूल के फ्रेंड्स हमें, मित्र अच्छे लगने लगते हैं। माँ बाप को भूल करके स्कूल के फ्रेंड्स हमें अच्छे लगते हैं। और बड़े होते हैं तो विवाह होता है, तो फिर कौन अच्छा लगता है? पत्नी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं लगती जी, एक साल तक ही लगती है। एक साल बाद जब पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति हो, तो घर में संतान की प्राप्ति के बाद फिर उनको पुत्र या पुत्री अच्छे लगने लगते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मेरा जो है वो अच्छा लगने लगता है। और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद में फिर वो पुत्र पुत्री क्या करते हैं? अपना अपना विवाह आदि करके अपना परिवार बसा लेते हैं। पत्नी का देहांत हो जाता है, माँ बाप तो पहले ही जा चुके हैं। अब वो व्यक्ति अकेला रोड पर निकलता है अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ, और उसके हाथ में कुछ ब्रिटानिया के बिस्किट हैं, सोचता है खाऊं कैसे, दांत नहीं है मेरे। तो पीछे से एक कुत्ता आ जाता है भौंकता हुआ, और फिर सोचता है इसको बिस्किट खिला देता हूं, कुछ तो संस्कार दिए हैं, सेवा कर लूं, सोशल वर्क। तो फिर उस कुत्ते को बिस्किट खिलाता है, और कुत्ता जोर जोर से जंप करता करता पीछे घर तक आता है। तो कहता है यही है मेरा असली मित्र, और सारे मित्र तो झूठे थे, देखो दो बिस्किट दिए तो कितनी पूंछ हिलाता है, कितने जोर जोर से कूदता है। तो बस उसी के प्रेम में पागल हो जाता है, और अंत समय में अंत काले चा कुत्ता स्मरण वा कलेवरम, अपने कुत्ते का स्मरण करते हुए अंत काल में अपने शरीर का त्याग कर देता है। तो इससे बेहतर है कि हम अंत काल में कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण भक्तों का स्मरण करें, उनके संग में रहकर। ये उपलब्धि है, भाग्य उदय होता है ना, तब कोई व्यक्ति यहाँ आता है। कई लोग तो सोचते हैं क्या दुर्भाग्य का दिन था जब मैं इस कौन केंद्र में आ गया, इतनी सारी सेवाएं हैं। ये उसी को लगता है जो व्यक्ति क्या कर रहा है, भक्ति को ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा, उसका आनंद उसको रैलिश नहीं कर रहा। आनंद लेगा ना, फिर देखिए बहुत ही मजा आता है भक्ति करने में। तो इसमें बताते हैं पांच चीजों को त्यागने से व्यक्ति भक्ति का आनंद ले सकता है। पहली चीज है, भागवतम में वर्णन आता है, निरंकार हित निर्ममश्च निर्द्वंदो समदक्ष्वदकः। पतक प्रशांता धी धीरम प्रशांत उर्मी एव ओदधि। अगर व्यक्ति ये पांच चीजों को लगाए अपने जीवन में, इसको मैनेज करे, तो व्यक्ति शांत अनडिस्टर्ब्ड हो सकता है। किस प्रकार? प्रशांत उर्मी एव ओदधि। जैसे समुद्र शांत होता है, कितनी लहरें आती हैं उसके अंदर, लेकिन उतनी लहरों से वो उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी भक्ति नहीं छूटेगी, आप शांत रहेंगे, एकदम बैलेंस रहेंगे, अगर ये पांच गुण आपके जीवन में हैं। प्रथम गुण निरंकार हितम। पहला, आप व्यक्ति को निरंकार हित होना चाहिए, अहंकार हितम नहीं बोला गया। हम भक्ति में भी इगोस्टिक हो जाते हैं, आई एम बेटर देन हिम। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, हम क्यों अहंकारित हो जाते हैं? क्योंकि हम व्यक्ति को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऊपर का मेरा कपड़ा है, कुर्ता धोती जैकेट, और इसके अंदर जो है व्यक्ति पहनता है क्या, अंडर गार्मेंट्स, और उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का शरीर। तो अब मेरे कपड़े में चाहे कितनी भी गंदगी लगी हो, मेरे अंडर गार्मेंट्स कितने भी खराब हो, लेकिन व्यक्ति शरीर अगर अच्छा है तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए हैं, हमें इनसे प्रेम है, हमें इनसे रिलेशन है, हमारा इनसे ये है, तो आप उनसे बात करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वस्त्र कैसे हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हम कौन है, शरीर या आत्मा? पक्का ये वाले तो सो गए, बोले कोई बात नहीं, कुछ भी हो चलेगा, नींद आने दो। क्या है हम लोग? पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या है हम लोग? हाँ, आत्मा है, और परमात्मा में विलीन नहीं होना है हमको। हम सब हैं आत्मा, और इस आत्मा के ऊपर की कवरिंग, अंडर गार्मेंट्स पता क्या है? मन। और मन के ऊपर का वस्त्र क्या है? हमारा शरीर। तो हम ऊपर के वस्त्र देखते हैं, आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, व्यक्ति का शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, काला है, गोरा है। और फिर अगर उससे थोड़ा बेटर आगे बढ़ जाते हैं भक्ति में, तो फिर उसके मन को हम जांचने लगते हैं। वैसे तो बड़े अच्छे, लेकिन इनका नेचर ठीक नहीं, इनका मन ठीक नहीं, इनका ये ठीक नहीं, इनका वो ठीक नहीं। अगर हम ये देखें ये कौन है, तो सच्चित आनंद है, क्योंकि वो भगवान के अंश है। और सच्चित आनंद व्यक्ति आपको परेशान कैसे कर सकता है, आप उससे द्वेषी कैसे हो सकते हैं? आप द्वेषी होते हैं क्योंकि आप उसके वस्त्र या उसके अंदरनिय वस्त्रों को देखते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अहंकार रहित होकर भक्ति करें, निरंकारितम। और फिर दूसरा, निर्ममश्च। आपको बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना है संसार में, मेरा वस्त्र, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शरीर। शरीर से आसक्त हो जाते हैं लोग, कोई से जितनी आसक्ति को जितनी जल्दी हो सके इनको त्यागना चाहिए। अपने जो भी चीजें आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक हैं, उनको ग्रहण करें अपने जीवन में। जैसे मान लीजिए आपको जरूरत है एक गाड़ी की यहां से जाने के लिए, तो ठीक है छोटी गाड़ी ले सकते हैं कोई भी, जिससे आपका गुजारा चल जाए। घर चाहिए, कोई भी घर चल जाएगा। बहुत ही आलीशान घर या बहुत ही आलीशान चीजें रखने से क्या होता है, हमारी उनके प्रति और आसक्ति स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए पत्नी हो, बहुत सुंदर ढूंढने में लोग अपना समय व्यतीत कर देते हैं, सबसे सुंदर उन्हें, सबसे सुंदर, और बाद में वही सुंदर से परेशान हो जाते हैं। और फिर वो मोह भी नहीं छूटता उसके साथ में, और रहा भी नहीं जाता उसके साथ में। फिर वो बन जाता है ना इस घाट का ना उस घाट का, वो आप जानते ही हैं। तो फिर इस तरह से बेटर है कि हम जीवन में जो एज इट इज आ रहा है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके लिए अथक प्रयास ना करें। श्रील प्रभुपाद जी अपनी एक बुक है, उसका नाम है चैंटिंग बुक, उसमें प्रभुपाद जी के लेटर्स और बहुत सारे प्रवचनों को कंपाइल किया गया। उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, इससे कोई मतलब नहीं है आप कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 8 घंटे एक्शन करना है, मेहनत नहीं करनी है। 8 घंटे एक्शन करिए, गेन और लॉस, प्राप्ति और हानि, ये तो भाग्य विदित है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर मेहनत करने से भाग्य उदय होता तो कुत्ता लक्ष्मीपति कहलाता, क्योंकि एक गली के मोड़ से दूसरे गली तक भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। हम कृष्ण भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि प्रभु जी टाइम नहीं है, और टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि प्रभु जी धन कमाने में, अपने को प्रूफ करने के लिए हम भागे जा रहे हैं, टाइम बचा ही नहीं प्रभु जी। क्वाड्रेंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट को छोड़कर नॉन इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो क्या करें हम? ध्यान पूर्वक हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा, गेन और लॉस भाग्य विदित है। जब पांडवों ने पूछा कि हमने तो कृष्ण भगवान के साथ रहे और उनके साथ साथ हम हमेशा रहे, उनके निर्णय, उनके डिसीजंस को हमने माना, फिर भी हमें कहां जाना पड़ा? वनों में जाना पड़ा। और दुर्योधन दुर्बुद्धि होकर, कृष्ण के अगेंस्ट होकर राजमहल का राजा बना हुआ है। तो क्या कहा कुंती महारानी ने कहा कि भाग्यम फलतम सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, न पौरुष काम आता है न विद्या काम आती है, व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वो उसको मिलने वाला है। अभी भाग्य विदित को बदलने के लिए बहुत सारे नकली ढोंगी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य हैं, ये मणि पहन लो जी आपका भाग्य बदल जाएगा, ये पढ़ लो जी दुर्गा जी की कहानी उसके बाद आपका, सत्यनारायण जी कथा पढ़ लो आपके घर में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, भाग्य विदित है। अगर ऐसा होता कि मणि पहनने से किसी की मृत्यु टल जाती, मणि पहनने से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके जीवन में बदलाव होता, उसके प्रारब्ध कट जाते, तो जितने भी लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, आर्मी की फोर्स सिक्योरिटी बॉर्डर पे खड़ी होती है, वो एक ज्योतिषाचार्य बोलते हैं जी महामृत्युंजय मंत्र करो आप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। तो अगर ऐसा होता तो गन हटा दो AK-47 राइफल और फिर सबको महामृत्युंजय की माला पकड़ा दो, गोली आएगी कि हा मैं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुत्तिवर्षणम उर्वा रूपे वंदनाद नित्यम होते हरि बोल निकल गया। ऐसा थोड़ी मृत्यु से कैसे भी बच सकता है। इवन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा को भी ये नहीं मानना चाहिए इससे मुझे धन आएगा, इससे मुझे ये आएगा, इससे मुझे वो आएगा, इसका कारण क्या है, हम क्यों करते हैं जप, ताकि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, अपने पिता को हम याद कर सके जैसे हम भूल गए हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे माया तारी शक्ति झपटिया धरे, इसलिए माया में हम बंध गए हैं क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। कृष्ण का स्मरण करने का सबसे सरल रास्ता कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा हाँ। तो इस तरह से जब हम उत्साहित होकर भगवान के नामों का कीर्तन करें तो फिर हो सकता है हमारे जीवन में हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। ये हरे कृष्ण मंत्र का फल, ये नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमें परेशानियां नहीं आएंगी। आधे लोग तो इसी सुनकर ये लेक्चर सुन के छोड़ जाएंगे। अरे परेशानियां दूर करने के लिए तो आए थे यहाँ पर, तो परेशानियां मानसिक परेशानियां दूर होंगी, भौतिक परेशानियां दूर हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ इसको गलत मत समझिएगा, कृष्ण भावना भवित ये ऐसा व्यापार है जो बिल्कुल शुद्ध है, सतोगुण का व्यापार, इसमें कोई रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं है, तो इसको कृष्ण प्राप्ति होगी इससे। तो निरंकार रहित निर्ममश्च और निर्द्वंदो, द्वंद नहीं होना चाहिए जीवन में। बेटर क्या है क्या नहीं है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो अच्छा है मैं बुरा हूं, वो बुरा है मैं अच्छा हूं। हम मंदिर में आए थे आत्म साक्षात्कार के लिए और अभी हम घूमते हैं मंदिर में सेंटरों पे दूसरों के साक्षात्कार के लिए। आपको पता है गौरव प्रभु जी कैसे भक्त हैं? अरे बेकार है यार, कुछ नहीं है उनके अंदर, खामा का लीडर बने घूम रहे हैं यार, कुछ नहीं है ऐसे ही। अरे आते ही नहीं, खुद ही नहीं आते प्रवचन में, अरे कैसे भक्त हैं। अरे तो दूसरों का क्या जीवन है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा इससे मतलब होना चाहिए। हमें धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनके कारण हम जुड़ पाए, जिस व्यक्ति ने जोड़ दिया बस, उसके बाद वो क्या कर रहा है उसे छोड़ दो, अब आपके साथ में प्रभुपाद हैं, उनको पकड़िए। और अगर गाइड आपके है अवेलेबल तो उनसे निर्देश लेते हुए आगे पढ़िए पथ के ऊपर। निर्द्वंदो और फिर समदक, इक्वल टू ऑल, सबके लिए समान दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं ये पुराना है तो उसको दंडवत प्रणाम, नया आया है तो अबे लाइन में चलना है यार, क्यों बीच में आ रहा है, लाइन में आ जाए यार, तो ये भी गलत है। समदक इक्वल और स्वदक, मैं कौन हूं, हू एम आई, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, आत्मा। तो आत्मा अगर ऐसे बार बार बोलेंगे तो लोग सोचेंगे शमशान घाट में क्लास चल रही है। हाँ हम आत्मा है लेकिन इस शरीर में विराजमान है। तो भगवान ने कहा है इस यंत्र पे आरूढ़ होकर मैं घूम रही हूँ आत्मा जो है हमारी। शिला प्रभुपाद जी एक बार हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। तो गृहस्थ जीवन में हम सबको भी करना चाहिए, रोज घर में कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए एनवायरमेंट कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। अभी हम इतने नहीं है कि हम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तरह बाथरूम में बैठकर भी जप कर सकें, हमारा प्रेम अभी उतना नहीं है। तो हमारे लिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, अपने घर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएं कृष्णा के, जो चीजें हम विस्मरण कर देते हैं उनको उनको लिखें और उनको अपने सोने के स्थान पे लगाएं, ड्राइविंग के स्थान पे लगाएं, किचन के डब्बों पे लगाएं, हर जगह लगाएं कि मैं ये ना भूलूं। तो कोई भी जैसे मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है हर जगह लिखा होना चाहिए, घर में 10-15 जगह। मुझे निरंकार होना है हर जगह लिखा होना चाहिए, मुझे निर्द्वंद होना है, निर्ममश्च होना है मुझे, हर जगह लिखा होना चाहिए, समदक होना है। तो ये बार बार जब पड़ेगा ना हिट होगा हिट होगा हिट होगा, तो फिर एक दिन हो सकता है कि सच में हिट हो। वरना तो हम भूलने में नंबर वन है। अभी बाहर निकलेंगे, जैसे ही गर्मा गर्म दाल और चावल आएगा, मैं पूछूंगा कि क्या बोला प्रभु जी, प्रभु जी आप ही को याद रहता है, हम तो बस हरी बोल, इतना याद नहीं रख सकते, मुझे रखते तो हम ही नहीं लेक्चर देते, आपको क्यों बुलाते। तो इसको अपने जीवन में स्मरण रखने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अब बोलते हैं विजन, विजुअल्स से हमें जितना याद रहता है, हाँ विजुअल्स, उतना हम ऑडियो को याद नहीं रखते, तो विजुअल्स को हमें याद रखना चाहिए। और विजुअल्स को और अच्छे से याद रखने के लिए उनको बार बार लिखना चाहिए। तो जब भी प्रवचन में आए तो नोट्स कॉपी लेके आना चाहिए। क्या लेके आना चाहिए? हाँ, ये देखिए सबसे आगे जो बैठे हैं, इनके लीडर इसलिए बने, पीछे से आगे तक क्यों आ चुके हैं ये, क्योंकि ये नोट्स कॉपी लेके आए हैं। और जो लोग पीछे बैठे हैं दोनों हाथ पैंट में डाल के या शॉल के अंदर, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो वहीं बैठे बैठे पीछे से गेट से निकल भी जाएंगे भक्ति से बाहर। क्यों? क्योंकि हमें अगर भक्ति में प्रगाढ़ता लानी है तो ऑडियो जो सुनते हैं, विजुअल तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, उसको लिखना चाहिए। लिखने से स्मरण होता है या फिर बोलने से हमें स्मरण होता है। तो या तो चीजें बोलें, प्रवचन दें, प्रचार करें, लोगों को जोड़ें, या फिर उसको घर जाकर नोट्स बनाएं, बार बार लिखें, पढ़े लिखे पढ़े, तब वो स्मरण होगा एक्चुअली। ये नहीं कि प्रवचन में आके बैठे, जैसे चलता है ना, 7 दिन की भागवत कथा में आपका स्वागत है, इस भागवत कथा को सुनने से सबको कृपा मिलेगी, हाँ बोलो जय जय श्री राधे, वाह क्या सुंदर कथा चल रहा है, सब सुनते हैं, वो कथा सुनाने वाले भी बीड़ी भाज हैं और सुनने वाले भी बीड़ियां चाय पीते हैं, कोई कोई भक्ति का कोई अंश मात्र ही नहीं है। तो अगर हम सच में भक्ति को लाना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जब लगता था मैं अपने वृंदावन को भूल रहा हूं, तो हारमोनियम या मृदंगा लेके बैठ जाते थे और फिर भजन बुक रख लेते थे सामने और फिर उस भजन बुक से भजन पढ़ने लग जाते थे। तो एक बार एक उनकी भक्त थी, उनका नाम था यमुना माता जी। तो यमुना माता जी बहुत ही ज्यादा उनसे प्रेम करती थी, उनके भजन से, उनकी आवाज से। और जब प्रभुपाद जी ऊपर रूम में बैठ के भजन गाते थे तो यमुना माता जी नीचे बैठकर आशुपात करती थी, रोती थी, कितनी सुंदर आवाज है, ऐसा लग रहा है बस मैं कृष्ण से कनेक्ट हो गई हूँ, जुड़ गई हूँ कृष्ण के साथ में। हाँ, तो एक बार प्रभुपाद जी ने कहा जाओ देखो सीढ़ियों पर यमुना बैठी होगी, उनसे बुला के लाओ। तो प्रभुपाद जी को पता था कि नीचे सुनती है मेरा कीर्तन, तो भक्त गए बुला के लाए, तो देखा माता जी थी, वो आई बैठी। तो उन्होंने पूछा यमुना तुम्हारा सबसे प्रिय भजन कौन सा है? तो हर भक्त का एक प्रिय भजन, एक प्रार्थना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा सबसे प्रिय भजन है शिष्टाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का, और मैं उसे रोज निरंतर उसका पाठ करती हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तो उन्होंने कहा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद आप बताइए आपका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरा सबसे प्रिय भजन है कौन सा है जानते हैं? कौन बता सकते? हाँ जी, हरी हरी बिफले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विश खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित इस भजन को श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक गाते थे। हरी हरी बिफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जान पूछ कर हमने विष खाया, अगर हमने भगवान के द्वारा इस दुर्लभ मानव देह पाकर भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, राम इनका भजन नहीं किया तो हमने जान पूछ कर अपने जीवन को क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया, श्रम ए भी केवलम कर दिया। एक व्यक्ति थे उनका एक बार बस में पर्स, एक व्यक्ति थे उनका बस में पर्स लॉस्ट हो गया, पर्स होता है ना वॉलेट, जब वॉलेट लॉस्ट हो गया तो ड्राइवर ने पूछा किसी का बटुआ गुम हुआ है क्या बस में? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले हाँ मेरा बटुआ गुम हुआ है। कह रहे हैं आपका अगर बटुआ है तो आप बता सकते हैं, अपनी चीज के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है, उसे पता होता है मैंने कहाँ क्या चीज रखी है, बताइए अगर आप ही का बटुआ है तो इसके अंदर क्या है, कितने पैसे हैं? तो वो व्यक्ति बुजुर्ग हंसने लगा, बोला इसमें एक बस का टिकट है जो मैंने अभी खरीदा है, इसमें कुछ धन है जिससे मैं ट्रेवल करूंगा, मुश्किल से 100 रुपए होंगे। तो उसने कहा जी ये तो कोई भी बोल देगा ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ स्पेशल बताइए जिससे ये बटुआ आपका है। तो उन्होंने कहा इसके अंदर भगवान कृष्ण का फोटो है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे बोल सकते हो भगवान कृष्ण का फोटो है, वो तो कोई भी लगा सकता है, भगवान का फोटो बोल दिया तुक्का मार दिया, ऐसे तुम्हें पर्स दे दूं? वो कंडक्टर इस तरह से बोलने लगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा जब मैं छोटा था तब मुझे अपने से प्रेम था, जब मैं छोटा था तो मुझे अपने से प्रेम था, और फिर मैं क्या करता था, अपना फोटोग्राफ लगाकर स्कूल जाता था। जब मैं अपने माता पिता को कृतज्ञ हो गया, उनको देखने लगा, इन्होंने मुझे ये दिलाया वो दिलाया, अच्छी एजुकेशन दी, तो मुझे माता पिता से प्रेम हो गया, और फिर मैं माता पिता का फोटोग्राफ लगाकर चलता था। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं फिर अपनी पत्नी का फोटोग्राफ लगाकर चलता था, वाह मर जावा रख लेता था पॉकेट, और उसके बाद में उसके बाद अपने बच्चे जब हुए, संतान हुई, तो मैं उनका फोटोग्राफ लगाता था, मेरा स्वीटी बेबी, मेरा बच्चा, मेरे नन्नू, मेरा मुन्नू, उसका फोटो लगा के चलता था। और फिर वो थोड़े समय बाद वो बच्चे जब बड़े होने लग गए और पिताजी को ताड़नाएं देने लगे, तो फिर धीरे धीरे वो बच्चों को एजुकेशन दी, उनकी पत्नी आई और उनके बच्चे आए, तो फिर अपने नाती पोतों का फोटो लगाता था, फिर वो भी बड़े हो गए, और अब मुझे इस संसार में मेरी पत्नी नहीं रही, वो छोड़ के चले गए, अब मुझे कोई नहीं पूछता। और जब सबको ही छोड़कर चले गए, तब मैं समझा इस संसार में अगर कोई मित्र है तो कौन है, कृष्ण है, जो शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी, बोलती तो LIC है, माताजी जॉब करती हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन जीवन के बाद तो प्रीमियम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, पैसे नहीं मिलते हमारे, घूमना पड़ता है, अथॉरिटी मांगते हैं, सिग्नेचर मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते। अगर आपने उनके लिए थोड़ा सा भी कर्तव्यपूर्ण भक्ति करी है तो वो आपको क्या करेंगे, आपको जीवन से तार देंगे। भगवान कहते हैं निय यह अब्रिकम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो इस भय से तुम्हें तार सकता हूं, अगर तुमने थोड़ा सा भी, अल्प से भी अल्प, कम से भी कम, सुअल्प मेरी लिए भक्ति का कार्य किया है। तो जीवन में रिश्तेदारों के लिए इतना कुछ करते हैं, ठंड में जाएंगे शादियां मनाने के लिए, और वहां पर होते भी बड़े बड़े गार्डन हैं, और ठंड में घुमाते हैं उस गार्डन में, और इतने बड़े बड़े गार्डन में शादियां होती है इस पार से उस पार, रोटी लेकर जब तक आता है व्यक्ति तब तक तो ठंडी हो जाती है, एक ही प्लेट में इतना सारा वो उसमें खाना डालते हैं, समझ नहीं आता कौन सा खाना किसके साथ में खाना है, रसगुल्ले के ऊपर दही गिर जाता है, फिर वो आते पूछ रहे होते प्रभु जी आपको ये दही बड़ा कहां से मिला, दही बड़ा नहीं रसगुल्ला है। इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने परिवार की शादी के लिए, आने जाने के लिए, लेकिन अगर बोला जाए आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा अगर आप भगवत गीता का अमृत वितरण करेंगे लोगों को, तो फिर सर्दी होती है, प्रवचन में प्रभु जी बोलना हरे कृष्णा, तो फिर है ना कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, आगे जो बैठे होते हैं, पीछे वाले ऐसे बोलते हैं, उसके पीछे वाले ऐसे बोलते हैं, उसके पीछे वाले बोलते ही नहीं, फिर आवाज आती महाप्रसाद गोविंद, प्रभु जी हो गया बहुत बढ़िया, प्रभु जी आपने बहुत मजा आ गया, क्या आपने प्रवचन दिया प्रभु जी मजा, आप प्रभु जी हर बार आप ही आया करो, हम सो तो पाते हैं पीछे आराम। तो ये भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस तात्पर्य में लिखा कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, रजोगुणी और तामसी कहा जाता है, इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं, पापी कुलों में जन्म लेते हैं, समान रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसे कि यहाँ इस श्लोक में बोला गया व्यप आश्रितः, मतलब कि व्यक्ति को शरण ग्रहण करनी है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही व्यक्ति असली भक्ति योग कर पाएगा। रामदेव जी का योगा आश्रम ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा, वो तो शारीरिक योग कराते रहेंगे, करने से होता है, करना पड़ेगा, वो तो कराते रहेंगे। और बहुत सारे लोग शरीर के लिए बहुत काम करते हैं लेकिन आत्मा के स्तर के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो हम भक्त बन सकते हैं, ये ऑथेंटिक है, चाहे हम स्त्री हो, निम्न जाति के हो, वैश्य मतलब व्यापारी हो, शूद्र हो, लेकिन हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी एक सुंदर कथा के साथ हम विराम करेंगे। जैसे बताया गया कि बहुत समय पूर्व, आज से तकरीबन 800 साल पहले, नहीं 12वीं शताब्दी में एक संत हुए, उनका नाम था बिल्ल मंगल ठाकुर। और बिल्ल मंगल ठाकुर वो रहने वाले थे साउथ इंडिया के एक श्री वैष्णव ब्राह्मण थे, और उनके उनको अपने इतने सारे ब्राह्मण कर्तव्य थे और वैश्य भी थे वो, क्योंकि उनके घर में बिजनेस, खेती बाड़ी भी होती थी, बिजनेस भी होता था, और सब कुछ होने के बाद में उनके घर में एक पत्नी थी और बच्चे भी थे। लेकिन एक दिन उनके एक दोस्त, ये होता है सत्संग और ये होता है असत्संग, सत्संग से कृष्ण भक्ति आती है, असत्संग से कृष्ण भक्ति जाती है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, इनका त्याग भी करना असत्संग त्याग ही कहलाता है। इनका संग करना असत्संग का संग करना कहलाता है। तो इनका जितना जल्दी हो सके हमें त्याग करना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ फोन करके हरे कृष्ण कहने के लिए होना चाहिए, और फेसबुक तो कर रहनी चाहिए हमको, और फिर इंटरनेट, ये सब चीजें हमें बहुत ही कम इन पर जाना चाहिए, क्योंकि ये भी असत्संग ही है। हमें पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा, हम ढूंढने तो गए थे कुछ और पहुंच जाएंगे कहीं और। तो इस तरह से उनके मित्र उनको लेके जाते हैं, और एक नदी को पार करके उस पार एक वैश्या रहती थी जो कि भगवान कृष्ण के सुंदर भजन गाकर लोगों को आकर्षित करती थी। उसका नाम था चिंतामणि। और फिर ये जाते हैं और उस पार जाकर चिंतामणि के भजन सुनने के बाद उससे आसक्त हो जाते हैं, और फिर वापस आकर अपनी पत्नी को बिना बताए रोज रोज वहां आना जाना उनका शुरू हो जाता है। एक दिन उनके घर में उनके पिता का श्राद्ध होता है, श्राद्ध कर्म, और श्राद्ध कर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये श्राद्ध कर्म करना गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए। और वो कहते हैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतामणि का भजन सुनना, उसके आवाज, उसके शरीर, उसके रूप से मैं क्या हूं, आसक्त हो चुका हूं। तो उनकी पत्नी कहती है कम से कम आज के लिए रुक जाइए, आज इतना तूफान है। तो कहते नहीं रुक सकता, मैं कहां हूं, जा रहा हूं। कहां? चिंतामणि के पास। और जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म को तुरंत समाप्त कर वो पहुंच जाते हैं कहां, चिंतामणि के पास। जब पहुंचते हैं तो वहां तूफान में इतना पानी नदी में कि नदी कैसे पार करें। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर नदी पार करते हैं, और उस पार आकर देखते हैं चिंतामणि का घर बंद है। तो उसके घर में पीछे दीवार से एक रस्सी टंगी होती है, उस रस्सी को पकड़कर उसके घर में पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाती है, कहती कैसे आए इतने तूफान में, हाँ मिल्लव मंगल तुम कैसे आए। तो कहता है मैं आया हूँ लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर नदी पार करके। हाँ, तो पता चलता है बाद में कि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक मृत शरीर था जिसको छूने से वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया था, और फिर वो उसको पकड़ कर आ रहा है। उसकी काम वासना, उसकी इच्छाएं, इतनी आसक्ति उसको खींच के ले आ रही है। और फिर रस्सी जिसको पकड़कर वो चढ़ता है, तो वो रस्सी कोई और नहीं, एक सर्प जो उसके घर में जा रहा था उसको पकड़ के वो कभी भी डस सकता था, बस मृत्यु इंतजार कर रही थी उसका, लेकिन बच गया वो प्रारब्धों के अनुसार। और जब अंदर पहुंचा तो चिंतामणि ने कहा कि तुम किसके लिए आए हो यहां पर, हा? मेरे शरीर के लिए, जिस शरीर को बनाने के लिए भगवान ने खून, पस, पीप, मल और मूत्र का इस्तेमाल किया है। हाँ, अगर इसको टोटल किया जाए तो 110 रुपए का ये थूक, पीप और पस का थैला है। इस थैले के आकर्षण में तुम क्या करके आए हो, तुम सारे गलत काम करके मृत्यु को अपने हाथ में लेके सर पे कफन बांधकर मुझ तक आए हो। अगर तुमने जितनी मेहनत इस संसार में मुझको पाने की है, अगर इतनी मेहनत तुम कृष्ण को पाने की करते तो हो सकता है कि तुमको कृष्ण प्राप्त हो जाते। तो फिर वो कहती है कि तुमने अपने इस कर्म से मुझको वैराग्य प्रदान किया है, क्योंकि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हूं, अब मैं तुम्हारे लिए भजन नहीं गाऊंगी। अब मैं समझ गई हूं कि अगर किसी को कोई कर्म करना है, ये संसार बंधन का कारण है। अगर मैं करूंगी तो किसको प्रेम करूंगी, कृष्ण को प्रेम करूंगी। और फिर वो कहकर वृंदावन चले जाती है, और पीछे से उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं, और वो नदी के अंदर अपने प्राण त्याग देते, मर जाते हैं। और फिर अब इनके पास भी कोई नहीं बचा, माँ बाप का तो श्राद्ध करके आए थे और पत्नी बच्चे भी मर गए, अब ये अकेले हैं, और चिंतामणि ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये भी चलते हैं वृंदावन की ओर, तो रास्ते में इनको एक व्यक्ति का घर मिलता है, वहां पानी पीने के लिए रुकते हैं। तो देखते हैं उसकी पत्नी बिल्कुल चिंतामणि के जैसे रूप वाली है, और उसके पीछे पीछे कहते हैं व्यक्ति से, हे मानव, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, हे ब्राह्मण, मेरी हेल्प करो, मुझे अपने मेरी चिंतामणि से मिला दो। उन्होंने कहा चिंतामणि नहीं है इसमें, तो मेरी पत्नी रहती है। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारी पत्नी दिखाओ। फिर जब वो पानी पिलाकर उनको शांत करते हैं, वो देखता है ओ ये तो कोई और है। तो कहते हैं क्या कि आप मेरी एक मदद करिए, अपने बालों की जो शलाखाएं हैं, पिंस लगाती है माता, पिन, ऑल पिन मुझे दे दीजिए, हेयर पिंस मुझे दे दीजिए। और उस पिन से वो क्या करते हैं, अपने नेत्रों को समाप्त कर देते हैं। कह रहे ये नेत्र ही है जिनके कारण मैं बार बार इस संसार में बार बार बंध जाता हूँ, आसक्त हो जाता हूँ। और अब उसको त्याग करके कहते हैं अब मैं जाऊंगा वृंदावन, नेत्रहीन होकर वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाकर भगवान का निरंतर कई वर्षों तक भजन करते हैं, और एक ग्रंथ की रचना भी करते हैं वो, जिसको कहा जाता है कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, बहुत सुंदर। और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने उस ग्रंथ को पढ़ा और उसके बारे में वर्णन किया कि बिल्लम मंगल ठाकुर एक विरला संत हुए हैं और हमें उनके पथ का अनुगमन करना चाहिए। इस संसार की आसक्ति को जितनी जल्दी हो सके त्याग कर कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और कृष्ण इतने दयालु हुए उनके ऊपर कि कृष्ण ने स्वयं आकर उनकी उनकी सेवा करी, उनको खाना खिलाया, उनके कपड़े बनाए, उनकी कुटिया बनाई, उनके साथ रहे और अंत में कृष्ण भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको नेत्र दान देते हैं कि लो मेरा दर्शन कर लो। तो कृष्ण का दर्शन तो करते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, कह रहे बस मेरी एक ही इच्छा है कि ये नेत्र मेरे वापस ले लो, क्योंकि अब इन नेत्रों के साथ मुझे संसार में नहीं बंधना। भगवान मुझे अब क्या चाहिए, आपके प्रेम के नेत्र चाहिए। प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अब मैं सिर्फ आपका भजन करना चाहता हूँ और अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाना चाहता हूँ, मुझे अब इस संसार के प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। और त्याग करके और फिर अपने शरीर का त्याग करते हैं और कहाँ जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं। तो हमें इन कथाओं से सीखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति और इवन वो जो चिंतामणि वैश्या थी उसने भी भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान ने कहा कि चिंतामणि तुम्हें तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने मुझे क्या दिया है, बिल्लव मंगल ठाकुर जैसा एक संत दिया है, तो तुम इसकी शिक्षा गुरु होने के नाते पहले से ही मुक्त हो चुकी हो। और उसने भी निरंतर भजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो आप सोच सकते हैं कि वैश्य जैसी स्त्री जो कि सारा दिन हमेशा इसी इंतजार में रहती थी कब मुझे कोई व्यक्ति आएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं उसको शराब पिलाऊंगी, ऐसी स्थिति की स्त्री भी भगवान के निरंतर भजन करने से क्या बन जाती है, चिंतामणि, संत चिंतामणि, वैरागिन संत बन जाती है। तो आप सोचिए हम तो कम से कम उनसे बेहतर है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे आगे, फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। और फिर भगवान ने यहां ऑर्डर दिया कि और कुछ मत करो, बस क्या करो, प्रेमा भक्ति में लगाओ। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग श्रील प्रभुपाद जी के इस मोमेंट में अपने आप को लगाए तो हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति के साथ लगाना है। और फिर अपने अंत काल में आप उस धाम में जाएंगे, उस धाम के बारे में जब सुनते हैं ना तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। कैसा धाम है जानते हैं आप लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग। व्यक्ति के जीवन में साध्य होना चाहिए, गोल, टारगेट, लक्ष्य, मुझे कहाँ करना है, कहाँ जाना है। ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हो उससे पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहे जी पता नहीं, कह रहे पागल आदमी है तुझे पता नहीं कहाँ जाना है, उतर नहीं ट्रेन से। तो अगर हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है, तो ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, वो कहते हैं हमारा टारगेट है चिंतामणि, वहां कौन सी जगह है ऐसी जो चिंतामणि की बनी हुई है, चिंतामणि प्रखर सद्मसु, चिंतामणि का है वहां पर। हमारे घर बने हुए मार्बल के बहुत अच्छे होते हैं, वरना मिट्टी के होते थे पहले, अभी मार्बल के हैं। और वहां जब जाएंगे ना तो वहां चिंतामणि रत्नों के, जिस रत्न का एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी माता को मिल जाए ना मैरिज एनिवर्सरी पे, उसको चार चार चाबियां लगाकर लॉकर में छुपा के रखती है, वो चिंतामणि रत्न का बना हुआ क्या है, पूरा भगवान का गोलोक धाम। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, और क्या लगा है, कल्प वृक्ष। आज तो मांगना पड़ता है क्या बनाए खाने में, सब्जी महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गए हैं, वहां जो इच्छा करो वो प्राप्त हो जाएगा। मांगिए लड्डू की प्लेट आ जाए, श्यूम, कल्प वृक्ष दे देगा। वो बात अलग है, वहां जाके लड्डू की इच्छा नहीं रहती, वो इधर ही होती है, इसीलिए लड्डू खाने के लिए इधर ही आते हैं बार बार। तो वहां जो व्यक्ति है, कल्प वृक्ष, जो इच्छा करो, जो चाहिए आपको प्राप्त होगा। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर पालयन्तम्। और वहां गाय कैसी है, सुरभि गाय, धेनु, काम धेनु, दूध निकलता है तो निकलता जा रहा है, यहाँ की तरह मिक्स नहीं होता। आप लोग तो फिर भी बेहतर है, गाय का दूध मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन बाकी दिल्ली शहर में तो बहुत बुरा हाल है, भैंस का मिलता है, ऊंट का मिलता है, गाय मालूम नहीं किसका पीते हैं। तो वहां मिलेगा सुरभि गाय का दूध, और उसको पीने से, उसका एक बूंद पाने से अमृत पान का स्वाद व्यक्ति को मिलता है, सुरभिर पालयन्तम्। और इस प्रकार का वो जो जगत है वो है गोलोक धाम एक्चुअली। तो हमें समझना चाहिए। और वहां पर और क्या है, कहते हैं चिंता मणि प्रखर सद्म सोकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, कितनी लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं? सहस्त्र, सहस्त्र मतलब थाउजेंड नहीं होता, सहस्त्र मतलब अनंत, मैनी 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 बहुत सारी। और हम एक लक्ष्मी मैया को बुलाने के लिए दिवाली का इंतजार करते हैं, कब आएगी दिवाली? ओ दिवाली, हैप्पी दिवाली लक्ष्मी मैया घर आना, अब की बरस आना फिर कभी मत जाना, हम वहां बोलते रहते हैं ओ लक्ष्मी के चक्कर में। और वहां सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, ऐसा स्थान है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, गोविंद का भजन करना पड़ेगा। वरना ब्रह्मा जी अगर सृष्टि के प्रथम जीव, झूठ नहीं कहते, वो बोल सकते थे दुर्गम आदि आदि स्त्रीम भजामि, या फिर बोल सकते शिव जी आदि पुरुषम तमम भजामि। उन्होंने कहा विष्णु आदि पुरुषम नहीं बोला, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि भगवान कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। फरीदाबाद के भक्त तो भाग्यशाली हैं जिन्हें साक्षात गोविंद का दर्शन होता है 37 सेक्टर फरीदाबाद मंदिर में। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, हरे कृष्ण।